19 अगस्त शुक्रवार, नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। दो दो शानदार जीत के बाद भारत को बड़ा झटका। डोपिंग मामले में पहलवान नरसिंह यादव पर लगा 4 साल का बैन, ओलंपिक से बाहर। पीवी सिंधु आज फाइनल मुकाबले को तैयार। रजत पदक जीतने के बाद कोच गोपीचंद बोले,
बहुत बड़ी विक्ट्री है। जिस तरह से सिंधु ने ओवरऑल हर मैच खेला है वो बहुत ही अच्छा रहा है। शी वाज स्मार्ट, शी वाज क्लेवर, शी वाज एग्रेसिव।
और बिहार के गोपालगंज में कथित जहरीली शराब पीने के मामले में मौतों की तादाद अब 18, पूरे थाने को किया गया सस्पेंड।
15 पुलिस पदाधिकारी जो नगर थाना स्थापित है उनको निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी उनके अलावा जितने भी सब इंस्पेक्टर थे और पूरे नगर थाना को निलंबित किया गया है।
सब आगे, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव पर डोपिंग मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद वो रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्हें आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 74 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेना था। नरसिंह पर यह बैन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के जरिए कल लगाया गया है। वो रियो ओलंपिक के पहले डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। बाद में नेशनल डोपिंग एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज महिलाओं के एकल मुकाबले के फाइनल में उतरेंगी। उनका मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मोरिन से होगा। सिंधु ने कल जापान की नजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में प्रवेश के साथ ही उनका रजत पदक पक्का हो चुका है, लेकिन सिंधु का कहना है कि वो स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देंगी। जर्मनी के गृहमंत्री टॉमस डे मेजियार ने कहा है कि बुर्का जर्मन समाज के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसे पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हाल में जर्मनी में हुए हमलों के बाद बुर्के पर पाबंदी को लेकर बहस जारी है। इसे लेकर गृहमंत्री ने कहा, इसे लेकर अहम सहमति है कि पूरी तरह जिस्म ढकने वाले कपड़े का हम जर्मनी में विरोध करते हैं। ये हमारे देश के अनुरूप नहीं है। हम मानते हैं कि एक दूसरे का चेहरा देखना, एक दूसरे की आंखों में देखना हमारे समाज को एकजुट रखने के लिए जरूरी है। कुछ साल पहले हमने प्रदर्शनों के दौरान बेवजह ही चेहरों को ढकने पर पाबंदी नहीं लगाई थी। हमने कहा था कि जो कोई भी अपने विचार प्रदर्शित करना चाहता है उसे अपना चेहरा दिखाना ही होगा। ये थे जर्मनी के गृहमंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस का कहना है कि वो सीरिया के एलेप्पो शहर में 48 घंटे के संघर्ष विराम का समर्थन करने को तैयार है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की अपील के बाद रूस ने कहा कि मानवीय मदद के लिए 2 दिन का संघर्ष विराम अगले हफ्ते से लागू किया जा सकता है। इसके पहले रूस ने कहा था कि वो हर दिन 3 घंटे का संघर्ष विराम लागू करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र ने ये मान लिया है कि हैती में 6 साल पहले फैले हैजे के संक्रमण में उसकी भूमिका रही है। इसे लेकर हुए वैज्ञानिक अध्ययनों में ये बात बार बार सामने आई थी कि संयुक्त राष्ट्र की सेना में शामिल नेपाली जवान बीमारी के वाहक थे। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं का स्वागत है हमारी रेडियो की पहली सभा में, फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से। रियो ओलंपिक का 11वां दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य जीता, उम्मीदें जगी। दूसरे दिन ही पीवी सिंधु ने 2 सेटों में ही अपने प्रतिद्वंदी को मात दे दी। भारत के हिस्से आया एक और मेडल। लेकिन उसी दिन एक बुरी खबर आई। देर रात भारतीय पहलवान नरसिंह यादव पर डोपिंग के मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज वो मुकाबले में भी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब नहीं, ये सपना यहीं खत्म हुआ। सीधे चलते हैं रियो, जहां हमारे साथी नॉरिस प्रीतम इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नॉरिस से बताएं कि फैसला किस तरह लिया गया, किसकी तरफ से लिया गया, क्योंकि भारतीय एजेंसी ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।
हाँ, नाडा जो भारतीय एजेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नाडा की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने ये इसके तहत उनको क्लीन चिट दी थी कि शायद उनकी खाने में किसी प्रकार का पदार्थ मिलाया गया जिसकी वजह से वो डोपिंग में फंस रहे हैं, ये प्ली देके उनको भेजा गया था। लेकिन वाडा ने उसको चैलेंज किया और वो फिर केस गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, इन जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का कोर्ट है, जिसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई यहाँ रियो में आज करीब 4 घंटे चली है वो, और फिर देर शाम को बल्कि रात के को उसका फैसला हुआ और उनको आज से, नरसिंह को आज से अभी से 4 साल का जो बैन घोषित किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बैन के साथ साथ उनको कानून के हिसाब से उनको गेम्स विलेज में रहने का भी अधिकार नहीं होगा और उनका एक्रेडिटेशन कार्ड वापस ले लिया जाएगा। अगर अभी हालांकि बहुत तेज यहाँ बारिश हो रही है, शायद आज रात को ना निकालें उनको विलेज से, लेकिन कल सवेरे उनको जरूर विलेज से निकाल दिया जाएगा और वो जल्दी से जल्दी फ्लाइट लेके उन्हें घर भेजा जाएगा, क्योंकि डोपिंग के चार्ज में फंसे हुए इंसान को खेलों से बहिष्कार निष्कासित किया जाता है और उन्हें खेलों के जहाँ पे सिटी शहर होता है उसमें रहने का अधिकार नहीं होता। ये बहुत दुखद समाचार है और बहुत मायूसी फैली है, सब पत्रकार इधर से उधर भटक रहे हैं, सब जा रहे हैं।
ये बताएं नॉरिस के नरसिंह यादव क्या लगता है 4 साल बाद मैदान में बने रह पाएंगे?
देखिए ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है जिसका जवाब भी उससे ज्यादा टेढ़ा है। 4 साल बहुत लंबा समय होता है, खाली ओलंपिक की बात नहीं कि ओलंपिक में नहीं कर सकते, 4 साल वो किसी भी प्रतियोगिता में जो कि भारतीय वेट रेसलिंग फेडरेशन की हो या ओलंपिक की हो एशियन की हो उसमें नहीं कर सकते, तो एक तरह से ये सोचिए कि उनका करियर जो है वो खत्म ही हो गया है, ये मानना चाहिए।
ये एक बात जानना चाहेंगे कि इससे पहले कोई ऐसा मामला आया है जिसमें कोई भारतीय इस तरह की डोपिंग में ओलंपिक में या किसी बड़े गेम में फंसा हो?
अक्सर एथेंस में फंसे हैं, सिडनी में फंसे हैं, लोग फंसते रहते हैं और लेकिन इस तरह का जो है ये पहला मौका है कि किसी को गेम्स में आकर और 4 साल के लिए किसी को बैन लगे। ये जहाँ तक मैं याद समझता हूँ और मैं जानता हूँ, मैं इतने सालों से खेल कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये पहला मौका है जब किसी अच्छे पहलवान को, किसी अच्छे खिलाड़ी को भारत को 4 साल का बैन मिला है, वो भी जब कि उसकी दूसरे दिन इवेंट होने वाली थी, उनका ड्रॉ में नाम था, फ्रांस के एक खिलाड़ी से वो कल कम्पीट करने वाले थे। ये एक अपने आप में एक बिल्कुल एक अनूठी बात है, नई बात है जो इससे पहले कभी नहीं हुई।
एक और सवाल जानना चाहेंगे कि नॉरिस जब उनका चुनाव हुआ था तो वो भी काफी विवादों में घिरा रहा था।
जी हाँ, वो विवादों में घिरा रहा था और लेकिन उसमें ये है कि जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो आप नहीं कह सकते, कई खिलाड़ियों के नाम आए कि उनकी साजिश हो सकती है, इनकी साजिश हो सकती है, तो ये सब चलता है, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो मेरे ख्याल इस स्टेज पे कम से कम किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। हाँ ये जरूर है कि उनको कई लोगों के ऊपर शक था और पुलिस ने भी वहाँ पे सोनीपत में जहाँ SAI का सेंटर है वहाँ रेड करी थी और एक दो खनसामे वगैरह उनको भी पकड़ा था और उसी से ही नाडा ने साबित किया था कि इनके साथ साजिश हुई है। अब लेकिन क्योंकि वाडा ने केस जीत लिया है केस में, तो इनकी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो भारत वापस जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया नॉरिस प्रीतम पूरी जानकारी के लिए। भारत की पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले में रजत पदक पक्का कर लिया है। बीती रात सीधे सेटों में जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही उनका रजत पदक तो पक्का हो गया है, लेकिन पीवी सिंधु ने कहा है कि उनकी नज़र स्वर्ण पदक पर है और वो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। नॉरिस प्रीतम से ही सुनिए एक और रिपोर्ट।
रियो में लगातार दूसरे दिन भारत ने एक और मेडल पक्का कर लिया। महिलाओं के बैडमिंटन सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को महज 51 मिनट में 21-19, 21-10 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। अपने पहले ओलंपिक खेलों में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया। कोच गोपीचंद सिंधु के आज के खेल से खुश थे।
बहुत बड़ी विक्ट्री है, जिस तरह से सिंधु ने ओवरऑल हर मैच खेला है वो बहुत ही अच्छा रहा है। सिंधु अच्छा खेली, आई थिंक शी वॉज स्मार्ट, शी वॉज क्लेवर, शी वॉज एग्रेसिव एंड शी नीडेड एंड शी वॉज डिफेंसिव एंड शी नीडेड, बट ओवरऑल आई थिंक शी प्लेड रियली वेल।
फाइनल में सिंधु का मुकाबला स्पेन की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मरीन से होगा। गोपीचंद का मानना है कि मैच कांटे का होगा, लेकिन उन्हें भरोसा है कि सिंधु गोल्ड मेडल पर कब्जा करेगी।
सिंधु इज अ डिफरेंट प्लेयर, शी इज प्लेइंग इन अ डिफरेंट लेवल। आई नो मरीन हैज आल्सो बीन वेरी गुड, बट अच्छा मैच रहेगा होपफुली एंड होपफुली विल कम आउट स्ट्रांगली एंड होपफुली विल गेट अ गोल्ड मेडल।
दिन के बाकी दो मुकाबलों में भी महिलाएं मैदान पर रहीं। गोल्फ में आदिति अशोक 8वें स्थान पर चल रही हैं। लेकिन फ्रीस्टाइल कुश्ती में बबीता फोगट 53 किलो वर्ग के पहले राउंड में ही ग्रीस की मारिया प्रिविलोका राखी से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक्स, BBC ब्राजील।
भारत की बैडमिंटन नेशनल कोच मधुमिता बिश से हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की इसी मामले पर और पीवी सिंधु के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से होने वाले मुकाबले के बारे में पूछा।
मैं क्या बताऊं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, वो जो खेली है फैंटास्टिक एंड सुपर डुपर द वे, आई मीन पूरा ओलंपिक्स में शुरू से ही जो प्री क्वार्टर फाइनल एंड आज सेमीफाइनल जैसे वो खेल रही है एंड आई फील नो उसको कोई प्रेशर नहीं है, शी इज नथिंग टू लूज एंड द वे शी इज प्लेइंग कॉन्फिडेंटली मूविंग वेल, रियली गुड गुड वर्क।
और अब शुक्रवार को उनका सामना कैरोलिन मरीन से है जो कि स्पेनिश खिलाड़ी हैं, सेमीफाइनल में चीन की जुई रुई ली को हराया जो कि लंदन ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो आपको लगता है कि मरीन भी जबरदस्त फॉर्म में है?
मरीन भी अच्छा खेल रही हैं, इवन सिंधु भी बहुत अच्छा खेल रही है। लास्ट ईयर जब हम डेनमार्क ओपन में लास्ट ईयर अक्टूबर में सिंधु ने कैरोलिना मरीन को हराया था सेमीज में, उसके बाद से सिंधु ने अपनी काफी मैच्योरिटी दिखाई है एंड इम्प्रूवमेंट हुआ है, कॉन्फिडेंस अभी जैसे कॉन्फिडेंस उसकी काफी हाई है एंड अगर वो ऐसे ही बरकरार रखे, बिकॉज मेरे हिसाब से सिंधु इज नथिंग टू लूज बिकॉज दो करंट वर्ल्ड चैंपियन ट्वाइस वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेल रही है, वर्ल्ड रैंक नंबर वन है, सीडेड टॉप सीड है, सो देयरफॉर सिंधु इज नथिंग टू लूज एंड आई फील जैसे सिंधु खेल रही है ऐसे खेले कॉन्फिडेंटली खेले सिंधु कैन विन द गोल्ड।
और आपको लगता है कि कैरोलिन मरीन जो कि खब्बू खिलाड़ी हैं इसका कितना फायदा उन्हें मिल सकता है?
इससे पहले भी बहुत बारी खेले ऐसे कोई बात नहीं है, ये लोग सीजन प्लेयर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि लेफ्टी प्लेयर है तो ये खेलते आ रहे सीजन प्लेयर्स है, मेरे हिसाब से यू गेट यूज्ड टू इट।
और अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 बार ये दोनों आमने सामने हुई हैं, 4 बार मरीन जीती हैं, 2 बार सिंधु, लेकिन आपको लग रहा है कि सिंधु इस बार प्रेशर लिए बिना खेल रही है?
हाँ, प्रेशर तो मेरे हिसाब से शारजा होके खेल रही है, उसके कॉन्फिडेंस बहुत है एंड फोकस्ड है, सबसे पहली है फोकस्ड है, पेशेंस रख के खेल रही है।
एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि सिंधु ने इस बार पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से अटैकिंग खेल दिखाया है, उनकी हाइट काफी अच्छी है और उनके रिटर्न बहुत अच्छे हैं, स्मैश बहुत दमदार रहे हैं, तो ये वो खासियतें हैं जिसकी वजह से सिंधु फाइनल तक पहुंची?
सिंधु का ऑलराउंड गेम खाली अटैक से नहीं, आप देखो उसके कोर्ट मूवमेंट, कोर्ट कवरेज प्लस पेशेंस, रैली करके भी खेलिए, जब मौका मिला है तब उसने फिनिश किया, शार्ट स्ट्रोक, नेट कीपिंग, एवरीथिंग, ऑल सेक्शन ऑफ द गेम शी वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट।
भारत की बैडमिंटन नेशनल कोच मधुमिता बिष्ट, उनसे बात की थी आदेश कुमार गुप्त ने। और एक खबर और ब्राजील से ही। ब्राजील की पुलिस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के कुछ तैराकों ने बीते सप्ताह रियो के एक पेट्रोल स्टेशन पर में तोड़ फोड़ की। इन तैराकों ने खुद के साथ लूट की वारदात होने का आरोप भी लगाया था, लेकिन रियो पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अब वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और इस बात पर भी विचार हो रहा है कि क्या इन तैराकों पर झूठी जानकारी देने का आरोप दर्ज किया जाए। बीबीसी संवाददाताओं की भेजे ब्यौरे के साथ हैं वात्सल्य राय।
अमेरिका के चैंपियन तैराक रायन लोकटी समेत 4 तैराकों के साथ हुई कथित लूट के मामले की जांच कर रही ब्राजील पुलिस ने तैराकों के आरोपों को गलत बताया है। ब्राजील पुलिस का कहना है कि तैराकों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। शहर के पुलिस प्रमुख फर्नांडो वेलुजू के मुताबिक इन तैराकों में से कुछ ने एक पेट्रोल स्टेशन पर तोड़फोड़ की थी और उसके बाद हर्जाना देने की पेशकश की थी। उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा गार्डों ने मामले में दखल दिया तो अमरीकी तैराकों ने नुकसान की भरपाई की और वहां से चले गए। पुलिस प्रमुख वेलुजू का कहना है कि अमरीकी तैराक घटना को लेकर लगातार अपने बयान बदलते रहे हैं, उन पर गलत बयान देने और तोड़फोड़ के आरोप लगाए जा सकते हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा,
nesse exato momento o que a polícia pode afirmar é,
इस वक्त पुलिस ये जानकारी दे सकती है कि एथलीटों ने जैसी जानकारी दी थी वैसी कोई लूट नहीं हुई, उन्होंने जो बयान दिया था वो उस तरह की घटना के शिकार नहीं हुए थे। पुलिस इस बात की पुष्टि कर सकती है, नियम के मुताबिक उन पर झूठी गवाही देने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा सकता है। ये थे रियो के पुलिस प्रमुख फर्नांडो वेलुजू के शब्द। इन 4 तैराकों में से 3 गुनार बैंड्स, जैक कॉन्गर और जेम्स फाइजन अभी ब्राजील में हैं, जबकि रायन लॉक्टी सोमवार को अमेरिका वापस चले गए। गुनार और जैक को बुधवार रात रियो एयरपोर्ट पर रोका गया और उन्हें ब्राजील छोड़ने से मना कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की। वहीं जेम्स का कहना है कि वो पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रमुख वेलुजू ने बताया कि घटना के वक्त रायन लोकटी नशे की हालत में थे और इस वजह से वो बहुत गुस्से में थे। ब्राजील में इन तैराकों के साथ हुई घटना से जुड़ी फुटेज टीवी पर प्रसारित की गई थी और दावा किया गया था कि ये घटना की फुटेज है। इस फुटेज में अमरीकी तैराक पेट्रोल स्टेशन के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस प्रमुख वेलुजू ने कहा कि रियो के लोग अपने शहर की छवि खराब होने को लेकर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि तैराकों को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए।
Pararam no posto de gasolina, foram ao banheiro, como as imagens já mostraram, foram divulgadas.
वो गैस स्टेशन पर रुके, जैसा तस्वीरों में भी नजर आता है। वो टॉयलेट गए। उनमें से एक या एक से ज्यादा लोगों ने टॉयलेट के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करने वाले कितने लोग थे। ये थे रियो के पुलिस प्रमुख फर्नांडो वेलुजू के शब्द। कथित घटना में शामिल तैराक रायन लोकटी की गिनती सबसे कामयाब तैराकों में होती है। उन्होंने 12 ओलंपिक पदक जीते हैं। रियो ओलंपिक में उन्होंने 4x200 मीटर रिले में गोल्ड जीता था। वहीं फाइजन ने 4x100 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया था। रियो के पुलिस प्रमुख का कहना है कि मामले की कोर्ट में सुनवाई के बाद वो सिफारिश करेंगे कि इन तैराकों को ब्राजील से जाने की इजाजत दे दी जाए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक खबर बिहार से। बिहार के गोपालगंज में कथित रूप से जहरीली शराब पीने के कारण हुई 18 मौतों के मामले में थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बिहार में शराबबंदी लागू है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर काबू करने के सख्त हुक्म दिए थे।
जहरीली शराब पीने से बिहार के गोपालगंज जिले में मंगलवार की रात मौत का जो अमंगल सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें मृतकों की संख्या गुरुवार की रात तक 18 पहुंच गई। उधर शराब त्रासदी के लिए नगर थाना की पुलिस को जिम्मेवार ठहराते हुए गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक रवि रंजन ने गुरुवार देर शाम थाना प्रभारी, दरोगा और सिपाहियों से लेकर मुंशी ड्राइवर तक 25 लोगों को निलंबित कर दिया। आरक्षी अधीक्षक की कार्रवाई को जायज ठहराते हुए गोपालगंज के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा नए उत्पाद कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार
आरक्षी अधीक्षक ने 15 पुलिस पदाधिकारी जो नगर थाना स्थापित है उनको निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी का नाम बीपी आलोक है। उनके अलावा जितने भी सब इंस्पेक्टर्स थे और पूरे नगर थाना को निलंबित किया गया है एसपी गोपालगंज के द्वारा।
नगर थाने में नए अधिकारियों को पदस्थापित कर दिया गया है। इससे पहले गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए 4,4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। गोपालगंज की घटना ने एक सबक दिया है। अब देखना यह है कि नए शराबबंदी कानून के तहत राज्य सरकार सूबे में अवैध शराब की बह रही पाताल गंगा को रोकने में कहां तक सफल हो पाती है। नीरज सहाय, BBC पटना।
बिहार के बाद चलते हैं मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, जहां दंगों में प्रमुख अभियुक्त और भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें मेरठ की एक सभा में वो समर्थकों से चुनाव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसा बता रहे हैं। विपक्ष बयान को चुनावों से पहले वोटरों को धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए बांटने की साजिश बता रहा है। हालांकि पार्टी ने इस बयान और वीडियो से अपने आप को दूर कर लिया है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बीजेपी अभी दयाशंकर सिंह के बयान के डैमेज कंट्रोल से उभरी भी नहीं थी कि पार्टी के एक अन्य नेता का भी विवादित बयान सामने आ गया है। पार्टी के सरधना क्षेत्र से विधायक संगीत सोम ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक ऐसा बयान दिया है जिसे सीधे तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। वीडियो में संगीत सोम समर्थकों से कुछ इस अंदाज में बातें कर रहे हैं।
लड़ाई यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जो ध्यान रखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है।
आरोप ये भी है कि संगीत सोम ने इस सभा में लोगों को रुपए भी बांटे। ये वही संगीत सोम है जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भूमिका को लेकर काफी चर्चा में थे। इस बार वो साफ तौर पर समर्थकों से पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हक में हैं या फिर हिंदुस्तान के। संगीत सोम के इस विवादित बयान को मेरठ से समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। समाजवादी पार्टी ने संगीत सोम के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी और राज्य सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
सरकार भी सब देखेगी कानून के जद में वो कहाँ है। अगर वो कानून की जद में है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही चरित्र है कि वो सांप्रदायिकता को ही अपनी राजनीति मानते हैं, लोगों में दूरी पैदा करना, नफरत पैदा करना।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वीडियो पर कोई भी बयान देने से साफ तौर पर बच रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी बोलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि पार्टी अपने नेताओं से ऐसे बयानों से बचने की लगातार हिदायत देती है।
पार्टी के हमारे जो नेता हैं उनको भी अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए, और ये वास्तविकता उत्तर प्रदेश की जो सूबे की सरकार है अखिलेश जी की, उसने अपराधियों का भी तुष्टिकरण किया है। वहाँ जो अपराधी हैं उनको भी जाति और मजहब के आधार पर ही पनिशमेंट होता है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होते हैं। बट भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और हमारी नेताओं से भी अपेक्षा है कि हम इस तरह का कोई शब्द, इस तरह की कोई भाषा ना बोलें जिससे हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो डाइवर्ट।
बीजेपी इस बयान को लेकर संगीत सोम पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं, सवाल के जवाब में श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि पहले वीडियो का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के नेता ऐसे बयान देकर चुनाव से पहले दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत अपील के बावजूद यदि नेताओं की ओर से ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं तो इसे इन नेताओं की कथित बदजुबानी कहकर ही टाल देना पर्याप्त नहीं होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारत के सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह पर उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से काम करने के आरोप लगाए हैं। वीके सिंह वर्तमान सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं। इस हलफनामे की बात सामने आने के बाद राजनीतिक दलों ने बयानबाजी तेज कर दी है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा ब्यौरा सुने निखिल रंजन से।
भारतीय सेना के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एक सेना प्रमुख ने पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। वर्तमान सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने पूर्व सेना प्रमुख और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पर उनके खिलाफ अवैध कार्रवाई करने और जानबूझकर उनका पदोन्नति रोकने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। दोनों सेना प्रमुखों के बीच का ये मामला वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन जनरल दलबीर सिंह सुहाग के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद से इस पर हंगामा खड़ा हो गया है। मामला सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने वीके सिंह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग कर दी। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला,
अगर आर्मी चीफ की बात नहीं मानेंगे तो पूरी फोर्सेज का मोरल जो है वो डाउन होगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री को तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले की छानबीन करके जनरल वीके सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए।
वामपंथी दल भी मान रहे हैं कि मामला संगीन है और आरोप लगाने वाले खुद भारत के सेना प्रमुख हैं, इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। CPM नेता वृंदा करात,
तो निश्चित रूप पर इस पर तो प्रधानमंत्री को कंसिडर करना चाहिए कि हमारे आर्म फोर्सेस के लिए ये क्रेडिबल है क्या कि डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ आर्मी चीफ बोल रहे हैं और वो मंत्रिमंडल में अभी भी बैठे हैं।
उधर बीजेपी का कहना है कि ये मामला वर्तमान सरकार के समय का नहीं है। पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने BBC से कहा,
देखिए जनरल वीके सिंह और जनरल सुहाग ये जब वो जॉब में थे तब का उनका मसला है, तो निश्चित रूप से ये मसला पुराना है और वर्तमान सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है, और अभी वो राज्य मंत्री हैं सरकार में, तो ये कांग्रेस ने जो इस्तीफे की मांग की है वो मैं मानता हूँ कि वो बेबुनियाद है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार से उस समय के उनके आपस के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है।
पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। अलग अलग दस्तावेजों में जनतिथि का अंतर होने के मामले में जब उनकी नौकरी के साल कम हुए तो वे सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, हालांकि उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। मौजूदा विवाद पर अब तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
ये थे निखिल रंजन। पुलिस का कहना है कि कर्नाटक में एक BJP कार्यकर्ता की गौरक्षकों के हाथों हुई हिंसा में मौत हो गई है। मामला उसी इलाके का है जहां बीते कुछ दशकों से गाय की खरीद फरोख्त का मामला बार बार सामने आता रहा है। यहां गाय का व्यापार करने वाले काफ़ी प्रभावशाली हैं और मुख्य रूप से हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा ब्यौरा सुनिए इमरान कुरैशी से।
कर्नाटक के तटीय इलाके में गौरक्षक बहुत सालों से काफी सक्रिय हैं। इस इलाके में पशुओं का धंधा करने वाले लोग आमतौर पर बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन बुधवार के रात को कारकला तालुक के हिबरी पुलिस थाने के इलाके में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। उड़पी जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केटी बालकृष्णा कहते हैं,
He was hired by one Mr. Ramesh to transport the cows.
एक रमेश नाम के शख्स ने प्रवीण पुजारी की गाड़ी किराए पर ली थी 3 गायों को लेकर जाने के लिए। जिन लोगों ने उनको मारा है उनका कहना है कि ये गाय कसाई खाने ले जा रहे हैं। जिन लोगों ने पुजारी की हत्या की है वो हिंदू जागरण वेदिके के सदस्य हैं। हमने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये थे केटी बालकृष्णा के शब्द। प्रवीण पुजारी के साथ अक्षय देवदिगा भी थे जिनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उड़पी और मंगलुरु जिले पहले दक्षिण कन्नड़ जिले के हिस्से थे। ये वही इलाका है जहां करीब 2 दशक से गायों को लेकर सतर्कता बरतने की शुरुआत हुई। यहां से गाय मलेबार के इलाकों में भी जाती थी, लेकिन बाद में गौरक्षकों के दल खड़े हो गए और इस काम में बाधा पड़ने लगी। यह इलाका सुर्खियों में उस वक्त भी आया था जब श्रीराम सेना के सदस्यों ने 2009 में एक पब में महिलाओं पर हमला किया था। उससे पहले बजरंग दल के सदस्यों ने मंगलुरु में चर्चों पर हमला भी किया था। उस समय कर्नाटका में बीजेपी सरकार थी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी पर खबरों का सच जानने के बाद वात्सल ये बताइए कि अखबार क्या कर रहे हैं। अखबार में मुझे जहां तक दिख रहा है कि गर्ल पावर छाया हुआ।
जी जी बिल्कुल सही कहा आपने फैसल साहब। और आज बात है कांसे का जश्न मनाया जा रहा है और सोने का इंतजार किया जा रहा है।
जी सोने का इंतजार सही
जी। साक्षी और सिंधु इन दोनों से ही सारे अखबार रंगे हुए हैं। फोटो हैं, तस्वीरें हैं, जानकारियां हैं। और जानकारी इस बात की है जो सिंधु आज फाइनल खेलने उतरेंगी बैडमिंटन सिंगल्स में, और वो उतरने के साथ एक इतिहास बना देंगी कि ओलंपिक में आज तक किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने सिल्वर या गोल्ड नहीं जीता है। पहली खिलाड़ी होंगी जो अच्छा। ये जीतेंगी। जी ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है अपनी हेडलाइन में, पहली हेडलाइन में। इसके साथ साक्षी के बारे में जानकारी दी है कि साक्षी जिस समय जा रही थी रियो ओलंपिक, उससे पहले उन्होंने अपनी एक तस्वीर ली, तस्वीर को फ्रेम कराया और उस तस्वीर पे लिखा हुआ था आई विल विन, और वो जीत कर लौट रही हैं।
और हेडलाइन भी बहुत अच्छी दी है, ऑन राखी इट्स विमेंस डे।
जी
मतलब राखी के दिन ये महिलाओं का महिला दिवस है ये,
और राखी के अगले दिन भी वही जश्न जारी रहने की उम्मीद की जा रही है, चाहे वो गोल्ड आए या सिल्वर आए। इसके अलावा एक जश्न की खबर के उलट एक इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है किसानों की आत्महत्या से जुड़ा मामला। बताया है कि साल 2014-15 के दौरान, यानी एक साल के दौरान 40% आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। 2014 में इस तरह के 5,650 मामले थे जिनकी संख्या अब 8,000 के पार हो चुकी है। तो ये एक अफसोस वाली खबर है। इसके अलावा रेड लाइन भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को दिखाई है, इसको भी ज़्यादातर अखबारों ने बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर रेड लाइन पार की है, तो भारत ने उसका जवाब दिया है कि जो आरोप लगाता है वो अपनी रेड लाइन खुद नहीं देखता है पाकिस्तान। तो ये सारे अखबारों ने इस रेड लाइन का जिक्र किया है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर ACB का छापा, ये भी ज़्यादातर अखबारों में है। खबर है गोरक्षकों की, जो इमरान साहब की आपने रिपोर्ट सुनाई, इसको भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए वात्सल्य। और अब खत्म करने से पहले एक बार फिर से सुना दीजिए विश्व समाचार श्रोता।
बीबीसी समाचार। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव पर डोपिंग मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद वो रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज महिलाओं के एकल मुकाबले के फाइनल में उतरेंगी। उनका मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मॉरिन से होगा। जर्मनी के गृहमंत्री टॉमस डे मेजियार ने कहा है कि बुर्का जर्मन समाज के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसे पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। रूस का कहना है कि वो सीरिया के एलेपो शहर में 48 घंटे के संघर्ष विराम का समर्थन करने को तैयार है। बीबीसी समाचार।
खबरों और विश्लेषणों के लिए बने रहिए bbchindi.com पर। अजीत सारथी ने प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाला था। नमस्कार।